नमस्कार, जनसत्ता वीकेंड पॉडकास्ट में सुनिए फिल्मी कहानियाँ। इस पॉडकास्ट में जानिए संगीत सुनने का प्रचलन कैसे बढ़ रहा है। पिछले कुछ दशक में संगीत सुनने का चलन काफी बढ़ा है। संगीत का बाजार व्यापक हुआ है, इसके साथ ही संगीत का स्वरूप भी काफी बदला है। खासकर भारत में इस क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रयोग हो रहे हैं और युवा पीढ़ी का आस्वाद भी उसी तेजी से बदलता दिख रहा है। हाल ही के कुछ सालों में संगीत के क्षेत्र में रैप और हिप हॉप जैसे चलन से जैसी तोड़फोड़ हुई है और युवाओं में इनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है, उसे देखते हुए स्वाभाविक रूप से कुछ सवाल उठने लगे हैं। पूछा जाने लगा है कि क्या इससे हिंदुस्तानी संगीत का शास्त्रीय मिजाज बदलेगा। अभी तक जो फिल्मी गीत शास्त्रीय धुनों से सूत्र ग्रहण किया करते थे, अब उनका रुख भी रैप हिप हॉप जैसे प्रयोगों की तरफ देखा जाने लगा है। संगीत की लय और भाषा में काफ़ी टूट फूट हुई है। ये कैसे और क्यों संभव हुआ? इस बदलते आस्वाद के पीछे की क्या वजह है? ये संगीत युवा पीढ़ी में क्यों लोकप्रिय हो रहा है? इस बार इन्हीं पहलुओं पर चर्चा। क्या संगीत की धुनों, उसके बोलों का कोई प्रभाव व्यक्ति के जीवन दर्शन, उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है? अगर ऐसा है तो क्या भारतीय संगीत और पश्चिमी संगीत के प्रभाव में कोई फर्क है? या फिर क्या खास तरह के संगीत की पसंद का व्यक्ति के व्यक्तित्व से कोई लेना देना है? कई वर्ष पहले मैंने किसी बच्चे से उसके दो दोस्तों में अंतर करने को कहा था। उसका जवाब बड़ा रोचक था। उसने कहा कि एक शांत है, आराम से बातें करता है, थोड़ा चुप चुप रहता है और अंग्रेजी गाने पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के तड़के की तरह है। दूसरा पूरा अंग्रेजी गाने वाला है, उसमें भी पॉप म्यूजिक वाला, जोर से बोलता है, किसी भी बात पर हल्ला करेगा और मस्ती के चक्कर में रहता है। पहली बार मेरा ध्यान इस सवाल पर गया कि क्या सचमुच संगीत और जीवन दर्शन में, व्यक्तित्व में कोई संबंध है। भारतीय ज्ञान परंपरा में तो ध्वनि विज्ञान काफ़ी विकसित है। ध्वनि का प्रभाव इतना व्यापक है कि कहते हैं कि इससे प्रकृति के नियमों को भी प्रभावित किया जा सकता है। ध्वनि ऊर्जा है और इसका व्यापक प्रभाव संभव है। ज्ञान की देवी सरस्वती के हाथ में पुस्तक के अलावा वीणा है और वो भी दो हाथों में। इसका विश्लेषण ये हो सकता है कि इस ज्ञान परंपरा में ध्वनि का बहुत महत्व है। अगर ये सही है तो फिर निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि संगीत के शब्द और ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व और जीवन पर ज़रूर पड़ता होगा। और अगर ऐसा मान ले तो ये जानना भी रोचक होगा कि अलग अलग तरह से पश्चिमी संगीत और भारतीय रागों का क्या प्रभाव होगा। और प्रश्न को थोड़ा व्यापक करें तो ये समझना भी रोचक होगा कि समाज के व्यवहार और संगीत का क्या संबंध हो सकता है। इन सवालों को पटल पर रख देने मात्र से समाजशास्त्र के लिए एक नए शोध क्षेत्र का द्वार खुल जाता है। शायद गांधी के भजन और उनकी अहिंसा की उनकी राजनीति में भी संबंध खोजना संभव हो सके। संगीत के मनोविज्ञान पर काम करने वाले शोधकर्ता एड्रियन नॉर्थ ने लगभग 36,000 लोगों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है कि किसी के संगीत की पसंद से उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। मसलन पश्चिमी शास्त्रीय संगीत सुनने वाले लोग शांत और रचनात्मक होते हैं, जबकि हिप हॉप पसंद करने वाले ज़्यादातर लोग पार्टी पसंद करने वाले, धूम धड़ाका करने वाले होते हैं। भारत में पश्चिमी संगीत को पसंद करने वाले ज़्यादातर शहरी उच्च मध्यम वर्गीय लोग होते हैं। केवल पूर्वोत्तर राज्य इसके अपवाद हो सकते हैं। खासकर शिलोंग शहर में पश्चिमी संगीत को किसी खास वर्ग से जोड़ना सही नहीं भी हो सकता है। शेष भारत में पश्चिमी संगीत का सुनिश्चित वर्गीय आधार है। इसके विस्तार का एक कारण अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूलों में इसका फैशन होना और स्टेटस सिंबल होना भी है। इन विद्यालयों में हिंदी भाषा, साहित्य या सिनेमा के बारे में बातें करना स्तरहीनता का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही हिंदी गानों का यहाँ चलन ना के बराबर है। मामला किसी एक के बेहतर या खराब होने का नहीं, बल्कि समाज के बदलते स्वरूप का है। समाज के मूल्य बोधों में जो अंतर है, वही अंतर संगीत के मूल्यों में भी हो तो आश्चर्य की बात नहीं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।